पृष्ठ संख्या 27, नज़ीर अकबराबादी, 1735 से 1830 ईस्वी। यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसमत छैया की, रख ध्यान सुनो दंडौत करो जय बोलो किशन कन्हैया की। दिल्ली के मोहम्मद फारूक के घर में 12 बच्चे पैदा हुए, पर एक भी जीवित नहीं रहा। जब 1735 ईस्वी में 13वें बच्चे के जन्म का समय आया, तो पिता ने पीरों और फकीरों को ताबीज लाकर अपने नवजात शिशु के जीवन की दुआ मांगी। बुरी नज़र से बचाने के लिए इस बालक के नाक और कान छिदवाए गए और इसे वली मोहम्मद नाम दिया गया। आगे चलकर वली मोहम्मद ने नज़ीर तखल्लुस नाम से शायरी की और अकबराबाद में रहने के कारण नज़ीर अकबराबादी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। नज़ीर के नाना नवाब सुल्तान खां आगरा के किलेदार थे। दिल्ली के बुरे हालात देखकर नज़ीर दिल्ली से अपने ननिहाल आगरा अकबराबाद चले गए। उस समय उनकी आयु 22 से 23 वर्ष की थी। उन्होंने नूरी दरवाजे पर एक मकान लिया और फिर वहीं के होकर रह गए। आगरा में ही तहवरुन निस्मा बेगम से नज़ीर ने शादी की, जिनसे उनकी 2 संतानें हुई, एक लड़का गुलजार अली और एक लड़की इमामी बेगम। नज़ीर ने लंबी आयु पाई, उसमें उन्होंने सुख भी भोगे और जीवन के कष्ट भी सहे। आगरा के बड़े बड़े लोग उनका सम्मान करते थे और जनता के शोषित समुदाय से उनकी अत्यंत आत्मीयता थी। जनता से उनका ऐसा घनिष्ठ संबंध था कि उनके यहाँ हिंदू मुस्लिम बड़े छोटे का भेदभाव मिट गया था। उनके स्वभाव में ऐसी सरलता और व्यवहार में ऐसी स्वच्छंदता थी कि सभी उनके मित्र बन जाते थे। भिखारी और खोमचे वाले भी उनसे अपने लिए कविताएं लिखा लेते थे। आगरा के मोहल्ला ताजगंज में रहते हुए वहीं पर 1830 में उनका निधन हुआ। घर के अंदर ही उनकी समाधि बनी। नज़ीर ऐसे सत्पुरुष थे कि उनकी मृत्यु के बाद बहुत से लोगों ने उन्हें बड़ा सूफी फकीर कहा और बहुत दिनों तक उनकी समाधि पर हर वर्ष मेला लगता रहा। उर्दू साहित्य का सौभाग्य है कि इमामी बेगम की बेटी विलायती बेगम सन 1900 ईस्वी में जिंदा थी, जब औरंगाबाद कॉलेज के प्रोफेसर मौलवी सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज नज़ीर की लेखनी पर खोज कर रहे थे। विलायती बेगम पृष्ठ 28 की मदद से प्रोफेसर शहबाज ने नज़ीर के कलामों को संजोया और इसे दुनिया के सामने बतौर जिंदगानी ए वे नज़ीर पेश किया, वरना नज़ीर के साथ ही उनके कलाम भी शायद दफन हो जाते। नज़ीर की शायरी को रोशनी में लाने का दूसरा स्रोत थे उनके शागिर्द लाला बिसराय के बेटे हरबख्श राय। नज़ीर इन्हें पढ़ाते थे। जब भी नज़ीर कोई शेर या कलाम कहते तो हरबख्श राय उसे कापी में लिख लेते थे। इन्हीं कापियों से नज़ीर के कलामों की जानकारी मिली। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का कथन है कि नज़ीर 8 भाषाएं जानते थे: अरबी, फारसी, उर्दू, पंजाबी, ब्रज भाषा, मारवाड़ी, पूर्वी और हिंदी। नज़ीर ने अपनी शायरी सीधी सादी उर्दू में आम जनता के लिए की। उस जमाने में इल्मो अदब शाही दरबारों में पलती पनपती थी, पर नज़ीर ही एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपने आप को दरबारों से दूर रखा। नज़ीर एक धर्मनिरपेक्ष शायर थे। उन्हें कुरान और पोथी में एक ही मालिक नज़र आते थे। जाता है हरम में कोई कुरान बगल मार, कहता है कोई दैर में पोथी के समाचार। एक विद्वान ने नज़ीर की उदार हृदयता और उर्दू साहित्य की एक नई धारा निकालने की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उस मुल्क और उजाड़ संगम पर आकर नज़ीर ने अजान दी और शंख भी फूका। तस्बीह भी ली और जनेऊ भी पहना। मुहर्रम में रोए तो होली में भड़ुए भी बने। रमजान में रोजे रखे और सलूनों पर राखी बांधने को मचल पड़े। शब बारात पर महताबियाँ छोड़ी तो दिवाली पर दीप सजाए। नबी रसूल वली पीर पैगंबर के लिए भी भरकर लिखा तो कृष्ण महादेव नरसी भैरव और नानक पर भी श्रद्धांजलि चढ़ाई। गुलो बुलबुल पर कहा तो आम और कोयल को पहले याद रखा। पर्दे के साथ बसंती साड़ी भी याद रही पर्दे के साथ बसंती साड़ी भी याद रही और तो और गर्मी बरसात और सर्दी पर भी लिखा। बच्चों के लिए रीछ का बच्चा, कौवा और हिरन, गिलहरी का बच्चा, तरबूज, पतंगबाजी, बुलबुलों की लड़ाई, ककड़ी, तैराकी, तिल के लड्डू पर लिखने बैठे तो बच्चे बन गए। हर एक बालक गली कूचे में गाता फिर रहा है। जवानों और बूढ़ों को नसीहत देने बैठे तो लोग वजद में आ गए। मानो कुरान, हदीस, वेद, गीता, उपनिषद, पुराण सब घोलकर पी जाने वाला कोई सिद्ध पुरुष बोल रहा है। उद्धृत उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास एहतिशाम हुसैन पृष्ठ 99। नज़ीर की छवि एक जन कवि की थी। उन्होंने जीवन का अध्ययन बड़ी सूक्ष्मता से किया था। साधारण सी घटना को भी वह असाधारण तरीके से बयान करते थे। वह ऐसे विषय पर भी शायरी कर देते थे जिस पर किसी अन्य शायर का पृष्ठ संख्या 29 ध्यान भी न जाता हो। नज़ीर प्रकृति के बहुत करीब थे। उन्हें पक्षी पालन का भी शौक था। शायरी की दृष्टि से भले ही नज़ीर ने रदीफ, काफिया उच्चारण और ध्वनि सौंदर्य का ख्याल ना रखा हो, पर उनकी रचनाओं की सरलता और समरसता है। भाषा के क्षेत्र में नज़ीर सबसे उदारवादी उर्दू कवि हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन संस्कृति का दिग्दर्शन कराया है। इसलिए चलताऊ हिंदी के शब्द भी बहुतायत से प्रयोग किए हैं। व्याकरण संबंधी नियमों की दृष्टि से नज़ीर की भाषा मीर और सौदा के ज़माने की उर्दू है, जिसमें पहले जैसे व्याकरण की कठोरता नहीं है। नज़ीर अकबराबादी ने बहुत से दार्शनिक गीत भी लिखे। उनमें सबसे चर्चित गीत है सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कैफी आजमी ने रमेश सहगल की फिल्म में इस गीत की प्रस्तुति की थी। नज़ीर के गीतों को लेकर हबीब तनवीर ने आगरा बाजार जैसा क्लासिक नाटक तैयार किया। नज़ीर ने लंबा जीवन सफ़र स्वतंत्रता और स्वच्छंदता से व्यतीत किया। अंत में वह पक्षाघात से पीड़ित रहे और अपने घर के आंगन के दो पेड़ों के बीच उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लोक भाषा का ऐसा लोकप्रिय कवि कोई दूसरा नहीं हुआ। वह एक नई परंपरा के जन्मदाता हैं।